अध्याय अधूरे रिश्ते, जब शब्द भी शक में हो। दोपहर 2:36, राजवंशी टावर्स, 29वीं मंजिल, सीईओ ऑफिस। अखिल अभी अभी जॉय को बाहर भेज चुका था। केबिन में अब कुछ क्षणों का सन्नाटा था, वही सन्नाटा जो उसकी आदत बन चुका था। वो खिड़की की ओर पलटा, जहां से मुंबई के स्टील और कॉन्क्रीट के जंगल का नज़ारा खुलता था। दूर छोटे छोटे लोग, गाड़ियां और भागती जिंदगियां, सब उसकी आंखों में बस किसी माइक्रोस्कोप के नीचे चलती इकाइयां थीं। तभी दरवाज़ा बिना खटखटाए खुला। अखिल, एक परिचित आवाज़ गूंजी। अखिल बिना मुड़े बोल पड़ा, दरवाज़ा खटखटाने की तमीज़ आज भी नहीं सीखी तुमने भैया? अर्जुन राजवंशी कमरे में दाखिल हुआ, हल्के ब्राउन सूट में, बाल सलीके से पीछे किए हुए, हाथ में वही पुराने ब्रांड की घड़ी और चेहरे पर एक कृत्रिम मुस्कान। अगर छोटा भाई दरवाज़ा बंद नहीं करता तो बड़ा भाई क्यों खटखटाए? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। अखिल अब भी खिड़की की ओर पीठ किए खड़ा था, उसकी मुंह की रेखाएं तन गई थीं। क्या काम है? उसने सीधे पूछा। यही पूछने आया हूँ, तुम्हें काम है क्या? अर्जुन ने कुर्सी खींची और बैठ गया। सुना है आज बड़ी मीटिंग है? हाँ, ज़रूरी है क्या? मतलब ऐसा कुछ है जो तुम्हारे बिना नहीं हो सकता? अखिल अब मुड़ा, उसकी आँखें स्थिर थीं, बिना पलक झपकाए। क्या बात है भैया? बात यह है, अर्जुन ने दोनों हाथ टेबल पर टिकाए, कि तुम कई दिनों से घर नहीं आए। दादाजी पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में, और मम्मी भी। मम्मी अब तुम्हें भी याद करती हैं, अखिल की आवाज़ में व्यंग था। अर्जुन ने हल्की हंसी हंसी, मैं तो हर किसी को याद दिला देता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें भी, कि तुम इस ख़ानदान का हिस्सा हो। इस मीटिंग के लिए मैं ही गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा? उसने आगे कहा। डॉक्यूमेंट्स मैं देख चुका हूँ, टीम मेरी सुनी है। एक दिन ऑफिस से दूर रहोगे तो आसमान नहीं टूटेगा अखिल। तुम्हारा आसमान कभी बना ही नहीं, अखिल ने चुपचाप कहा, तो टूटने की बात कैसे करूं? अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने अपना लहजा बदला। तुम ठीक हो? उसने धीरे से पूछा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखें कुछ और कहती हैं आजकल। ऐसा लगता है जैसे तुम किसी और लड़ाई में उलझे हो, एक ऐसी लड़ाई जिसका कोई गवाह नहीं, कोई वकील नहीं, बस तुम और तुम्हारा ज़मीर। अखिल हंसा, वो हंसी जिसमें थकान थी, तंज था और एक ठंडी दूरी। कभी कभी इंसान को अपनी ज़मीर से लड़ना नहीं पड़ता, बस उसे चुप कराना पड़ता है। और क्या वो चुप हो जाता है? अर्जुन ने पूछा। नहीं, मगर चीखना भी छोड़ देता है। कमरे में चुप्पी छा गई। कुछ देर तक केवल दीवार पर चलती घड़ी की टिक टिक सुनाई देती रही। दादाजी ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, अर्जुन ने जेब से एक लिफाफा निकाला और मेज पर रखा। अखिल ने उसे नहीं छुआ, उनसे मिलने का मन नहीं है, उसने सपाट स्वर में कहा। मिलना ज़रूरी नहीं है अखिल, अर्जुन की आवाज़ अब धीमी थी, लेकिन ये मानना ज़रूरी है कि वो अब भी तुम्हें मानते हैं और शायद तुमसे कुछ कहना चाहते हैं जो किसी और से नहीं कह सकते। जो भी कहना था कह चुके होंगे, बचपन में, जवानी में, जब जब जो उन्होंने किया था। इतना सहेज कर क्यों रखा है तूने सब? अर्जुन अब थोड़ा झुंझलाया। तुम भी तो इतने सालों से खुद को बदल चुके हो, दूसरों के लिए पत्थर बने हो, पर अंदर तो अब भी वही जला हुआ लड़का है ना, जो बस एक जवाब चाहता है। अखिल की आंखें चमकी, मगर होंठ फिर भी शांत थे। मैं जवाब नहीं चाहता, वो बोला, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुझे अब कोई सवाल न पूछे। मगर सवाल तो तुम्हारे पीछे चलते हैं अखिल, अर्जुन ने धीरे से कहा, जैसे परछाई, चाहे जितनी भी रोशनी जलाओ वो साथ नहीं छोड़ती। कुछ देर तक दोनों भाई आमने सामने बैठे रहे, जैसे दो ध्रुव जिनके बीच की दूरी कोई नहीं भर सकता। तुम्हें जाना है मीटिंग में? अर्जुन ने पूछा। हाँ, ठीक है, मैं कुछ देर और रुकता हूँ, बस दादाजी को एक कॉल कर दूंगा, कहूँगा कि तुम बिजी हो, लेकिन शायद अगली बार तुम खुद फ़ोन कर लो, उन्हें अच्छा लगेगा। अर्जुन उठ खड़ा हुआ। अखिल, उसने जाते जाते कहा, जो भी लड़ाई तुम्हारे अंदर चल रही है उसे जीतने में कोई जल्दबाजी मत करना, कुछ युद्ध दिल से नहीं, वक्त से जीते जाते हैं। अखिल ने कोई उत्तर नहीं दिया, अर्जुन चला गया। कमरे में अब फिर वही खामोशी थी, मगर इस बार उसकी परतें कुछ और भारी थीं। अखिल ने टेबल पर रखा लिफाफा उठाया, उसे घूरा कुछ देर, फिर चुपचाप दराज में रख दिया बिना खोले।